नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन नाटली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। वेस्टचार की पुस्तक डेटा इंडिपेंडेंस, रिक्लेमिंग प्राइवेसी इन एन एरा ऑफ इवॉल्विंग टेक, डिजिटल गोपनीयता। डेटा अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर केंद्रित एक गैर कथा पुस्तक है। इसका विषय केवल इंटरनेट पर सुरक्षित रहने की व्यक्तिगत सलाह नहीं है, बल्कि यह प्रश्न है कि रोजमर्रा के व्यवहार से उत्पन्न डेटा पर अधिकार किसका होना चाहिए। पुस्तक बताती है कि खरीदारी, ऑनलाइन गतिविधि, सामाजिक मीडिया, स्थान संबंधी संकेतों और बायोमेट्रिक जानकारी से व्यक्तियों के विस्तृत डिजिटल डॉसियर बनते हैं। इन डॉसियरों का व्यावसायिक तथा संस्थागत मूल्य होता है, जबकि जिन लोगों से डेटा उत्पन्न होता है उनकी सहमति और समझ अक्सर सीमित रहती है। चार इस असंतुलन को डेटा इंडिपेंडेंस की समस्या के रूप में रखते हैं। वे डेटा कंसेंट, डेटा कंट्रोल और डेटा करेंसी के तीन सिद्धांतों के माध्यम से सुधार का ढांचा प्रस्तावित करते हैं। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को तकनीकी भय में डालना नहीं, बल्कि डेटा संबंधों में शक्ति, चयन और जवाबदेही को समझने योग्य बनाना है। केस स्टडी, विशेषज्ञ दृष्टि और व्यावहारिक दिशा के सहारे यह व्यक्तिगत अधिकारों के साथ नीति और संस्थागत जिम्मेदारी पर भी विचार करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डिजिटल डॉसियर और अदृश्य डेटा अर्थव्यवस्था। पुस्तक की आरंभिक चिंता यह है कि व्यक्तिगत डेटा किसी एक ऐप, एक खरीदारी या एक ऑनलाइन खोज तक सीमित नहीं रहता। अलग अलग स्रोतों से निकले व्यवहार संबंधी संकेत जोड़े जा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ब्राउजिंग, खरीदारी की आदतें, सोशल मीडिया गतिविधि, लोकेशन ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक पहचान। जब इन्हें मिलाया जाता है तो व्यक्ति की पसंद, संभावित जरूरतों और दिनचर्या का अनुमान लगाने वाला डिजिटल डॉसियर बनता है। चार का तर्क है कि समस्या सिर्फ डेटा एकत्र होना नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि संग्रह, संयोजन, अनुमान और आगे के उपयोग की श्रृंखला आम व्यक्ति के लिए अस्पष्ट रहती है। डेटा को कंपनियों, संगठनों और सरकारों के लिए मूल्यवान संसाधन की तरह देखा जाता है, पर डेटा पैदा करने वाले व्यक्ति की भूमिका निष्क्रिय रह जाती है। इसीलिए पुस्तक गोपनीयता को केवल राज छिपाने का मुद्दा नहीं मानती, यह व्यक्ति की पहचान, चयन और सामाजिक भागीदारी पर नियंत्रण का प्रश्न बन जाता है। यह दृष्टि उन सरल धारणाओं को चुनौती देती है जिनमें मुफ्त डिजिटल सेवा के बदले डेटा देना सामान्य सौदा माना जाता है। पाठक को यह समझने का आधार मिलता है कि सुविधा, निगरानी और व्यावसायिक लाभ के बीच शक्ति का वितरण कैसे बनता है। दूसरा, तीन सी, सहमति, नियंत्रण और डेटा करेंसी का सुधार ढांचा। चार के प्रस्ताव का केंद्रीय भाग तीन सी का ढांचा है, कंसेंट, कंट्रोल और करेंसी। कंसेंट का अर्थ केवल लंबे नियम और शर्तों पर क्लिक करना नहीं है। सार्थक सहमति के लिए व्यक्ति को यह समझने की स्थिति में होना चाहिए कि कौन सा डेटा लिया जा रहा है, किस उद्देश्य से लिया जा रहा है और उसका आगे क्या उपयोग हो सकता है। कंट्रोल इससे आगे जाता है। इसमें व्यक्ति की वास्तविक क्षमता शामिल है कि वह डेटा तक पहुंच पाए, उसके उपयोग को सीमित करे, अनुमति बदले या उसे वापस ले सके। पुस्तक का तीसरा विचार, करेंसी, अधिक विशिष्ट है। यह व्यक्तिगत डेटा को मूल्य पैदा करने वाले संसाधन के रूप में देखता है और पूछता है कि उस मूल्य में व्यक्ति की हिस्सेदारी या निर्णयाधिकार क्या होना चाहिए। इसका अर्थ हर डेटा को बेचने योग्य वस्तु मानना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह वर्तमान व्यवस्था में मौजूद एकतरफा लाभ को पहचानने का तरीका है। तीनों सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर है। नियंत्रण के बिना सहमति कमजोर है और मूल्य के प्रश्न को नजरअंदाज करने पर नियंत्रण केवल औपचारिक रह सकता है। इस ढांचे के माध्यम से पुस्तक व्यक्तिगत गोपनीयता को अधिकार, आर्थिक न्याय और डिजिटल नागरिकता के संयुक्त प्रश्न में बदलती है। तीसरा, पर्सनल डेटा वॉल्ट की, डेटा पहुंच के लिए व्यक्ति केंद्रित कल्पना। पुस्तक में पर्सनल डेटा वॉल्ट की एक वैचारिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत होती है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि डेटा व्यवस्था व्यक्ति केंद्रित होने पर कैसी दिख सकती है। वर्तमान मॉडल में अलग अलग सेवाएं व्यक्ति के बारे में डेटा एकत्र करती है और पहुंच तथा उपयोग की शर्तें मुख्यतः वही तय करती है। डेटा वॉल्ट की का विचार इस संबंध को पलटता है। इसमें व्यक्ति यह तय करने की अधिक स्पष्ट स्थिति में होगा कि कौन उसके डेटा तक पहुंचे, किस उद्देश्य के लिए पहुंचे, कितनी अवधि तक पहुंचे और किन उपयोगों की अनुमति ना हो। यह अवधारणा डेटा पोर्टेबिलिटी, अनुमति प्रबंधन और उपयोग की पारदर्शिता जैसे व्यावहारिक प्रश्नों से जुड़ती है। साथ ही यह डेटा के संभावित मुद्रीकरण पर भी विचार रखती है, यानी यदि डेटा से आर्थिक मूल्य निकलता है तो व्यक्ति को उस मूल्य के बारे में निर्णय का अधिकार मिल सकता है। फिर भी इसकी उपयोगिता किसी तैयार तकनीकी उत्पाद के दावे में नहीं, बल्कि शासन के सिद्धांत में है। ऐसी व्यवस्था के लिए सुरक्षित पहचान, समझने योग्य विकल्प, दुरुपयोग रोकने वाली सुरक्षा और भरोसेमंद संस्थागत नियम जरूरी होंगे। पुस्तक इसीलिए डेटा वॉल्ट को व्यक्तिगत शक्ति और उत्तरदायी डिजाइन की दिशा में सोचने का माध्यम बनाती है, न कि एक अकेले समाधान के रूप में। चौथा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन, इक्वेलिटी और रिस्पेक्ट, तीन सी को व्यापक बनाने के लिए पुस्तक टेबल ढांचे का उल्लेख करती है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन, इक्वेलिटी और रिस्पेक्ट। ट्रांसपेरेंसी का आशय संस्थाओं द्वारा डेटा संग्रह और उपयोग को स्पष्ट भाषा में बताना है, लेकिन केवल जानकारी प्रकाशित कर देना पर्याप्त नहीं है। अकाउंटेबिलिटी यह मांग करती है कि गलत, भेदभावपूर्ण या घोषित उद्देश्य से अलग डेटा उपयोग के लिए जिम्मेदारी तय हो। प्रोटेक्शन डेटा सुरक्षा और अनधिकृत पहुंच से बचाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इक्वेलिटी विशेष महत्व रखती है क्योंकि डेटा आधारित प्रणालियां सभी समूहों पर समान प्रभाव नहीं डालती। जिन समुदायों के पास कम संसाधन, कम तकनीकी समझ या कम सौदेबाजी की शक्ति है, वे अपारदर्शी डेटा प्रथाओं से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। रिस्पेक्ट का सिद्धांत व्यक्ति को केवल विश्लेषण की वस्तु नहीं, अधिकारों और गरिमा वाले नागरिक के रूप में देखने को कहता है। टेपर की शक्ति यह है कि वह गोपनीयता को केवल साइबर सुरक्षा तक सीमित नहीं करता, यह संस्थागत व्यवहार, समानता और मानवीय सम्मान को भी डेटा गवर्नेंस का हिस्सा बनाता है। इस प्रकार पुस्तक व्यक्तिगत विकल्पों के साथ कंपनियों, नियामकों और सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका पर संतुलित ध्यान देती है। अंत में AI, डेटा लोकतंत्र और स्वायत्तता का सार्वजनिक प्रश्न, पुस्तक डेटा अधिकारों को AI के बढ़ते प्रभाव से जोड़ती है। AI प्रणालियां विशाल डेटा के आधार पर पैटर्न सीखती हैं और कई क्षेत्रों में निर्णय या सिफारिशों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए व्यक्तिगत डेटा का प्रश्न केवल विज्ञापन की प्रासंगिकता तक सीमित नहीं रहता, यदि डेटा बिना सार्थक सहमति, पर्याप्त निगरानी या विविध सामाजिक दृष्टियों के उपयोग में आता है, तो प्रणालियां उन संस्थाओं की प्राथमिकताओं को मजबूत कर सकती है जिनके पास डेटा और तकनीकी संसाधन है। इस संदर्भ में डेटा इंडिपेंडेंस डेटा लोकतंत्र की भाषा अपनाती है। व्यक्ति के पास अपने डेटा के उपयोग पर एक प्रकार का डेटा वोट होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर AI निर्णय को व्यक्तिगत मतदान से चलाया जा सकता है। इसका अधिक व्यावहारिक अर्थ है कि लोगों को प्रतिनिधित्व, सूचना, आपत्ति और भागीदारी के रास्ते मिलने चाहिए। पुस्तक का सार्वजनिक निहितार्थ यह है कि डेटा गवर्नेंस को निजी अनुबंध भर नहीं माना जा सकता। यह रोजगार, ऋण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अवसरों जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़ सकता है। पाठक के लिए निष्कर्ष है कि डेटा स्वायत्तता व्यक्तिगत डिजिटल आदतों, कॉर्पोरेट जवाबदेही और प्रभावी कानून, तीनों के संयुक्त प्रयास से ही सार्थक बनेंगे। निष्कर्ष में डेटा इंडिपेंडेंस उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो यह समझना चाहते हैं कि डिजिटल गोपनीयता का सवाल पासवर्ड, कुकी सेटिंग या सोशल मीडिया सावधानी से कहीं बड़ा क्यों है। तकनीकी पृष्ठभूमि न रखने वाले पाठक इसकी सुलभ भाषा और अवधारणात्मक ढांचों से लाभ ले सकते हैं। डेटा, AI, उत्पाद डिजाइन, नीति, कानून या सार्वजनिक हित से जुड़े पेशेवरों के लिए यह व्यक्तिगत डेटा के नैतिक और संस्थागत आयामों पर चर्चा शुरू करने का आधार बन सकती है। पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रासंगिक है जो सुविधा आधारित डिजिटल सेवाओं और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन को समझना चाहते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक डेटा उपयोग के बारे में स्पष्ट प्रश्न पूछने लग सकता है, जैसे कौन सा डेटा लिया जा रहा है, किस उद्देश्य से, कितनी अवधि के लिए और किसके साथ साझा किया जा सकता है। इसका बौद्धिक लाभ यह है कि गोपनीयता को व्यक्तिगत एकांत के बजाय शक्ति, समानता और नागरिक स्वायत्तता के प्रश्न के रूप में देखा जाता है। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकें निगरानी के खतरों का वर्णन करती है या सुरक्षा उपायों पर केंद्रित रहती है। 4 की पुस्तक की अलग पहचान उसके रचनात्मक सुधार प्रस्ताव में है। 3C और टेपर जैसे ढांचे आलोचना को नीति, डिजाइन और व्यक्तिगत अधिकारों की भाषा से जोड़ते हैं। पर्सनल डेटा वॉल्ट की का विचार भी पाठक को यह कल्पना करने देता है कि डेटा पहुंच का केंद्र प्लेटफॉर्म नहीं, व्यक्ति हो सकता है। इसी कारण यह पुस्तक चेतावनी के साथ वैकल्पिक दिशा भी प्रस्तुत करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं वेस्टचार, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।